उसी में बुलाए हुए प्यारे भाई और बहन, हम पहुंच गए हैं क्लास नंबर 20, जिसका नाम है महान मीनार और बाइबल। क्या लिंक है इनका आज हम पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा मीनार है और बाइबल के साथ उसका क्या लिंक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संसार के 7 अजूबों में से एक अजूबा, जिसका नाम है गीजा मीनार, पिरामिड ऑफ गीजा, गीजा का मीनार, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 7 अजूबों में से एक जो मिस्र में है, जिसका बड़ा तगड़ा कनेक्शन है बाइबल के साथ। लेकिन यह ना तो ये संसार जानता है और ना ही वचन सिखाने वालों को ये लिंक का पता है। ये 7 अजूबों में से एक ऐसा अजूबा है जो अभी तक मौजूद है। लगभग 4000 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, ठीक है। 6 आए चले गए, आए चले गए, ताज बहुत देर में आया, अभी ताज है, उसके बाद ऐसे। तो ये 7 अजूबों में से एक ऐसा अजूबा है जिसकी इतनी उम्र है, आज भी है ये, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ाई करेंगे और इसका कनेक्शन बाइबल के साथ देखेंगे क्या है बाइबल। अभी आप सोच रहे हो सकते होगे कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या है, ये कैसे संभव है। तो चलो पहले हम थोड़े वचन पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे। यशाया 19 बाप का 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। यशाया 19 का 19 और 20। हाँ जी, 19 का जी
19 और 20। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी और उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए एक खम्मा खड़ा होगा। वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा और सब वे अंधेर करने वालों वाले के कारण यहोवा की दुहाई देंगे। तब वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा और उन्हें मुक्त करेगा।
तो ये ऐसी भविष्यवाणी थी यशाया की जो 150 साल से पहले नहीं समझी गई थी। 150 साल पहले भी सिर्फ लिमिटेड ग्रुप को समझ आई और आज परमेश्वर की दया से आपको समझ आएगी, सबको नहीं, ये सिर्फ खास लोगों के लिए है। ये बात कर रहा है वचन परमेश्वर के लिए एक वेदी की, ठीक है, परमेश्वर के लिए एक वेदी की जो बाइबल में है और जो कौन से देश में है, मिस्र में, जो मिस्र में है। अब ये वेदी क्या है और ये खंबा क्या है जो मिस्र के सेंटर में है, बीच में है, बीचों बीच सेंटर में, ठीक है। तो ये यशाया एक ऐसी वेदी की बात कर रहा है जो मिस्र देश में है, वो और कोई नहीं हो सकती, वो यही है गीजा मीनार। क्यों, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम इसके बारे में सीखे, पहले जो गीजा मीनार है उसके कुछ बनावट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जो मीनार है ये 486 फुट ऊंचा है, 486 फुट ऊंचा, यानी कि 40 से 45 फ्लोर बिल्डिंग लगा लो, 486 फुट ऊंचा है। 764 फुट लंबा है, मतलब चारों तरफ 764 फुट है, स्क्वायर है, वर्ग जैसे बोलते हैं, ठीक है। 13 एकड़ एरिया में ये बना हुआ है, जरा सोचो 13 एकड़ एरिया। और इसका जो कारीगरी है इस मीनार की, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मतलब मनुष्य तब की बेस्ट बनावट इसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसका जो मटेरियल, जो ये जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ, वो आज ये जो जितने इंग्लैंड के चर्चेस वगैरह हैं ये सब यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पता हो अगर इसराइल किसका गुलाम हुआ था, मिस्रियों का गुलाम हुआ था, तो मिस्री क्या करवाते थे, मिस्री इनसे बहुत बड़ी वो बेगारी करवाते थे और इनसे बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते थे, इनसे बड़े बड़े मीनार बनवाते थे। और वो मीनार पता किसके लिए होता था, जो 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 मीनार बनाया जाता था उसमें जो फैरो होते थे ना, फैरो, फैरो की गद्दी पे बैठता था, फैरो को जब वो मर जाता था तो उसकी वो कब्र होती थी, जैसे प्रभु, हाँ मीनार में, जैसे प्रभु यीशु मसीह को केव में रखा था ना, ऐसे ही उनका भी रिवाज था कि टूम में रखते थे, ऐसे एक ना गुफा में। तो ये एक गुफा का काम करती थी, वो जो मीनार बनाते थे ये इसमें फैरो रखते थे। लेकिन इस मीनार में खासियत ये थी कि ये किसी फैरो की कब्र नहीं थी, नहीं बनी, ठीक है। और एक एक पत्थर 16 टन, 16 टन का एक पत्थर, 16 टन का मतलब समझते हो, 16 लाख किलो, कितना, 16 लाख किलो का एक एक पत्थर। और उनको जोड़ा ऐसे गया कि पेपर की भी वो नहीं है,
पेपर भी इसमें नहीं,
हाँ मतलब जुड़ा हुआ जॉइंट में इतना, हाँ इतनी सुंदर कारीगरी है। और एक पत्थर का वजन, एक जो पत्थर है 880 टन, यानी 880, मतलब 880,000 किलो, जरा सोचो 880 टन। और पत्थर की ऊंचाई पता कितनी, पत्थर की ऊंचाई, आपका घर कितना है, 10 फुट, 10 फुट का 3 गुना, 30 फुट ऊंचा पत्थर लगा हुआ है, एक पत्थर की बात कर रहा हूं मैं जो उधर लगा हुआ है। आप जरा सोचो, उस वक्त तो ये मशीनरी नहीं थी, क्रेन भी नहीं थी, ये 30 फुट पत्थर कैसे उठाया होगा उन्होंने, 30 फुट ऊंचा पत्थर 880 टन, यानी के 3 जीरो लगा लो, 880,000 टन, सॉरी किलो का पत्थर किसने और कैसे उठाया होगा। 4,000 साल पुराना है ये, 2170 बीसी में बनाया गया, ठीक है। और इसका टोटल वजन, टोटल वजन जो जितने पत्थर हैं वो है 6 मिलियन टन, यानी 60 लाख टन। अभी इसको किलो में बदलो तो 3 जीरो और लगा लो 60 लाख के साथ। अगर उसको खत्म करना हो या मतलब ढाना हो तो 6,000 ट्रेन चाहिए उसका मलवा लेके जाने के लिए, और एक एक ट्रेन 1,000 टन वजन लेके जाने वाली हो, तो इतना है उसका मलवा और इतनी है सुंदर उसकी बनावट और उसके पत्थरों की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, अगर मिस्र अपनी पूरी संपत्ति भी लगा दे, अगर मिस्र की जितनी संपत्ति है तब भी लेबर जो है वो कम पड़ जाएगी उसको खत्म करने के लिए। तो इसलिए ये बहुत पुराना और अब तक खड़ा हुआ 7 अजूबों में से एक अजूबा है। और ये पता किसने बनाया है, ये है मलिक सिद्दीक नाम का एक बंदा। मलिक सिद्दीक वो है जिसको इब्राहिम क्या देता था, दशवास देता था, ठीक है। और मलिक सिद्दीक के बारे में कुछ नहीं पता, वो किसका बेटा था, उसके माँ बाप कौन थे, उसका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई, कुछ नहीं पता।
बाइबल में राजा था ना।
हाँ राजा था, ये पढ़ लो उत्पत्ति 14 का 18 से लेके 20 तक, इब्राहिम उसको दशवांश देता था।
12 से लेकर 20 तक
14 का 18 से 20,
शालेम का राजा मल्क सिद्दीक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है।
तो हाँ जी देखो,
तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया।
तो ये इब्राहिम से भी बड़ा, इब्राहिम को परमेश्वर का मित्र बोला, इब्राहिम को विश्वास का पिता बोला गया है, सही ना। लेकिन ये उससे भी बड़ा, और माना जाता है कि ये मलिक सिद्दीक ने बनाया है ये मीनार। तो चलो ये तो बात हुई उसकी बनावट के बारे में, अभी मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। मैथ आपने 10वीं तक तो पढ़ा है दोनों ने, उसमें एक पाई शब्द आता था, पाई पाई शब्द, ऐसा ये पाई का वैल्यू होती थी 22/7 या 3.14। ये पता कहाँ से आ रही है, ये है ग्रीक शब्द, ग्रीक अल्फाबेट, एक टी आई करके ग्रीक अल्फाबेट है पाई, उससे आ रही है ये। उससे क्यों आ रही है, ये ट्रायंगल जो कैलकुलेट होता था ना, वो ट्रायंगल को कैलकुलेट करना, त्रिकोण को कैलकुलेशन करना, उसका घेरा ढूंढना, फॉर्मूला लगता है ना, पाई स्क्वायर पाई के दो या पाई लेंथ गुना ब्रेथ, ऐसा आता है ना, तो लंबाई चौड़ाई को, तो वो घेरा मापने के लिए जो फॉर्मूला बना वो उस मीनार से बना, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो घेरा और डायामीटर जो क्षेत्रफल, तो उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो उधर से, इसीलिए उसको ग्रीक शब्द दिया गया पाई नाम, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिक्स की बात हुई। अब मैं बात करूंगा जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब समझते हैं क्या, ज्योग्राफी जिसे बोलते हैं, जियोग्राफी का मतलब होता है धरती पे कौन से बिंदु पे हो आप। आपने देखा होगा आप जब आप मोबाइल सेट करते हो ना, मोबाइल पे समय, उसमें पूछता है जीएमटी, एक जीएमटी होता है ग्रीन मीन विच टाइम, उसका मतलब होता है कि जो धरती का सेंटर है वहां से आपकी दूरी कितनी है, कितना डिफरेंस है। जैसे इंडिया का 5.5+, इंडिया का 5.5+, मैं आपको बाद में मोबाइल में दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आगे जाओगे तो उधर प्लस, उधर को जाओगे तो माइनस। तो ग्रीन मीन विच टाइम का मतलब है जहां पे जीरो सेंटर है धरती का, सिंपल शब्दों में सेंटर, धरती का सेंटर कहाँ है। और हैरानी की बात यह है कि ये जो मीनार है ना, ये धरती के सेंटर में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाता है यहाँ पे। अगर संसार का नक्शा होता तो मैं आपको बताता, तो उसमें बताया हुआ है 0 डिग्री, ठीक है। सिस्टर नींद आ रही है आपको,
तो
यहाँ पे आके 0 हो जाता है, 0 मेरिडियन, ठीक है। तो जियोग्राफी की बात करो तो उसी से चलती है, ये देखो ये मैं दिखा भी देता हूँ नक्शा आपको, ये संसार का नक्शा है, इसका सेंटर, इस सेंटर में बिल्कुल खड़ा है, ठीक है। और तीसरी चीज एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का मतलब पता क्या है? एस्ट्रोनॉमी जो आज कैलकुलेट करते हैं कल बारिश होगी, मौसम का हाल चाल, ये वो सब। तो ये जो धरती से जो सूर्य की दूरी है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला भी पता कहाँ से आया? पिरामिड ऑफ गीजा से। इसमें है लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, लोग कंफ्यूजिंग है वो 10^9 कैसे आया, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके कैसे सूर्य की दूरी, ये देखो ये बताई हुई है उसकी ऊंचाई और उसकी 10^9 से पता चलता है कि 91,00,000 मील दूरी है सूर्य की धरती से। तो चाहे आप एस्ट्रोनॉमी की बात करो, चाहे ज्योग्राफी की बात करो, चाहे मैथ की बात करो, सारे फॉर्मूले वहां से आ रहे हैं, मीनार से आ रहे हैं। तो सचमुच इसमें वे आज तक एक रहस्य रहा है सभी लोगों के लिए, इसके बारे में जानना, इसके बारे में समझना, ये कौन बनाया, कैसे बनाया, इसका क्या मकसद है, सब सब रहस्य रहा है। तो चलो अभी परमेश्वर के वचन में से ढूंढने की कोशिश करते हैं। भजन संगीता 118:22,
जी, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया,
कोने का सिरा, कोने का सिरा। और एक और वचन पढ़ो, यशाया 28:16,
इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति बड़ा नींव का पत्थर,
तो
और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा।
तो यहाँ पे बोला नीम पत्थर, कोने का पत्थर, और ये दो वचन बोल रहे हैं, और कौन सा? सिरे का पत्थर। अभी ऐसा पत्थर कौन सा? जो तो नीम पत्थर है वो तो सिरे पे नहीं हो सकता,
नहीं, नीचे होगा,
तो नीचे होगा, सही बात है। और जो सिरे पे होगा वो तो टॉप पे होगा, ऊपर होगा। तो ये सारे पत्थरों को इस सब का क्या मतलब है? नहीं मैं बताता हूँ इस सब का क्या मतलब है, क्योंकि जो हेडस्टोन है, जो सिरे का पत्थर है वो नीम पत्थर नहीं हो सकता, जो नीम पत्थर है वो सिरे का पत्थर नहीं हो सकता। तो तीन चीजें होनी चाहिए, ऐसा पत्थर चाहिए जो कोने का पत्थर भी हो, कोना भी हो, मतलब कोने पे भी वही हो, हेडस्टोन भी हो और फाउंडेशन भी हो, मतलब नीम पत्थर भी हो। तो ऐसा कौन सी उसमें मिल सकता है बनावट में? ये बनावट
पिरामिड वाली है ना,
पिरामिड वाली।
हाँ, कोने का भी हो गया,
कोना भी हो गया, नीम भी हो गया
और ऊपर का भी हो गया।
तो ये पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है, जो पिरामिड बनता है, जो मीनार बनता है, वो जो नॉर्मल बिल्डिंग पता कैसे बनती है? नीचे से चलती है। लेकिन पिरामिड को अगर बनाना है तो पहले ऊपर से सब लेके आना पड़ता है, यहाँ पे बेस आएगा। बनावट तो नीचे से चलेगी लेकिन डिजाइन ऊपर से चलता है। कि देखो अगर आप नीचे से शुरू कर दो तो आपको कैसे पता चल रहा है क्या का क्या बनता जाएगा, लेकिन अगर बढ़िया शेप चाहिए तो क्या ऊपर से पहले इतने पे ऐसे इतना एरिया चाहिए, जैसे यहां से बेस आएगा ऐसे, यहां से आएगा ऐसे लाइन, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये पिरामिड के मीनार की जो बनावट है इसमें है। चलो आज तो हम बिनावट में नहीं जाएंगे, आज तो हम जाएंगे एक बहुत बड़े आत्मिक महत्व में जो इसकी बनावट के अंदर छिपा हुआ है, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, यशाया 19:19 में हमने पढ़ा कि वो मेरे लिए एक वेदी होगी, कहां, मिस्र के सेंटर बीच में, और एक खंबा होगा, एक खंबा होगा। यरमिया 32:20 में पढ़ लो ये बात,
तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए।
मिस्र देश में क्या किए, चिन्ह और चमत्कार। हाँ,
हाँ। और आज तक इसराइल में सब मनुष्य के बीच वैसा करता आया है, और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है।
देखो तो मिस्र में बहुत है, परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार किए। मिस्र में ही वो 10 प्लेग भी भेजी थी फारो के ऊपर, ठीक है। तो उन चमत्कारों में से एक चमत्कार था ये पिरामिड ऑफ गीजा, गीजा का मीनार, जिसकी लोकेशन, जिसकी मौजूदगी है धरती के बिल्कुल सेंटर में।
पिरामिड और मीनार में अंतर नहीं है?
इसको पिरामिड बोलते हैं इसको।
ये तो पिरामिड हो गए, मैंने देखा हुआ है।
हाँ,
मीनार तो सीधा एकदम स्थिर होता
है। नहीं नहीं, आई थिंक हिंदी में इसको मीनार ही बोलते हैं, हिंदी में। तो नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको अलग लगता तो मैं पिरामिड बोलता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये पिरामिड है।
हाँ, ये तो पता है पिरामिड,
तो मैं पिरामिड बोलता हूँ, ठीक है। तो पिरामिड बोलता हूँ मैं, पिरामिड है जो सेंटर में है, जिसका रेफरेंस बाइबल में दिया है ये दो वचनों में, यशाया 19 और यरमिया 32:20, ठीक है। और ये कितनी हैरानी की बात है कि इसका जो जिक्र है वो बाइबल में है, और इसका कनेक्शन बाइबल के साथ है। ताज का कनेक्शन बाइबल के साथ नहीं है, वो अकबर के साथ होगा, लेकिन इसका कनेक्शन बाइबल के साथ है। कैसे, ये पढ़ेंगे अभी हम, यशाया 19:19 का, यशाया 19 का 19 और 20 फिर से पढ़ना है।
उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी, और उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए एक खंभा खड़ा होगा।
देखो,
वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा।
देखो, चिन्ह के भी ठहरेगा और साक्षी। साक्षी का मतलब समझते हैं, गवाही।
सबूत,
सबूत, एक गवाही। अभी चिन्ह और गवाही, चिन्ह का जो इब्रानी शब्द है वो ओथ, ओथ का मतलब होता है एक तरह का सिग्नल, एक तरह का मतलब चिन्ह। तो ये बताएगा कि परमेश्वर की मौजूदगी, क्योंकि आदमी सोचेगा आज से 4000 साल पहले इसको कैसे बनाया होगा यार, हैरानी वाली बात है ना। 30 फुट पत्थर को कोई मशीनरी नहीं थी, और इसकी बनावट इतनी बढ़िया तरीके से हुई, ये कैसे हुआ होगा। और गवाही इस करके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने गवाही, एक गवाही इसलिए क्योंकि इसमें छिपी है परमेश्वर की योजना। ये जो योजना है ना, उसकी बनावट में है। इस जो पिरामिड है, इसकी बनावट में है योजना, किसकी, परमेश्वर की। इसीलिए लूका 19:40 में पढ़ लो, वही पत्थर के बारे में कौन बात कर रहा है।
लूका 19:40 है ना। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे।
तो ये कौन से पत्थर चिल्ला उठेंगे, यही मीनार के पत्थर एक दिन बताएंगे सारी मनुष्य जाति को परमेश्वर की योजना। परमेश्वर की योजना कहाँ है? बाइबल में, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। लेकिन आप विश्वास करो या ना करो, ये उत्पत्ति से लेके प्रकाशित तक वाक्य तक जो योजना है, ये इस मीनार की बनावट में है जो आज आप पढ़ोगे। अभी इसकी बनावट क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये इसका दरवाजा है, दरवाजे से ऐसे, दरवाजा 30 फुट ऊंचाई पे जाके है, 30 फुट ऊंचाई पे जाके या 50 फुट पे है, मैं अभी बता दूंगा। उस पे दरवाजा है और वहां से ऐसे नीचे को रास्ता आता है। नीचे को एंड में जाओगे तो यहाँ पे है खड्डा, यहाँ पे है खड्डा, ठीक है, ये देखो ऐसे। लेकिन खड्डे से पहले दो रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता यहाँ पे ग्रेनाइट लगा हुआ है, बंद है, रास्ता तो है लेकिन बंद है, किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे कोई रास्ता है। लेकिन खड्डे से पहले एक और रास्ता है जो ऐसे निकलता है, ऊपर को जाता है। ऊपर जाके एक तो ये रानी का चैम्बर है, यानी रानी का कमरा है, और एक तो गैलरी से होते हुए टॉप पे राजा का चैम्बर है। तो इस सब में, एक बनावट में है परमेश्वर की योजना, जो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, एक एक चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन इनके बारे में बात करें, याद रखना है कि ये खंबा है, ये एक वेदी है परमेश्वर के लिए। क्योंकि आपको अगर याद हो, आपको आपका एरिया जब कुछ भी नहीं था तो वहां पे पत्थर लिखते हैं ना, एक इसने इसका उद्घाटन किया,
इसका नाम लिखते, किसने इसका उद्घाटन किया, नींव रखी,
उनकी याद में रखा जाता है ना,
कि ये पलानी पलानी कॉलोनी,
और वो अमर अमर जवान वाला जो वो भी है,
जो दिल्ली है,
वो यादगारी का क्या होता है एक, तो ये भी एक यादगारी पत्थर है। किसके लिए? किसके लिए? ये पढ़ लो, पहला तिमोथियस 6:16।
इनको छोड़कर कितने लोग बकवास की ओर भटक गए हैं।
6:16
और अमरता के केवल उसी की है।
अमरता सिर्फ एक की है, आपने देख लिया अभी अमरता क्या होती है, जो मरना नहीं है, सिर्फ एक की है। हाँ,
और वह अमर की ज्योति में रहता है,
अगमय ज्योति में रहता है,
और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है।
ये देख लो,
उसकी प्रतीक्षा और राज्य युगांतर रहेगा।
कौन है ये? कौन है?
परमेश्वर
नहीं, कौन? यीशु मसीह। ये यीशु मसीह के बारे में वचन नहीं है, ये यीशु मसीह के बारे में वचन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को तो देखा, किसने देखा? प्रेरितों ने देखा, पौलुस ने देखा, इज़राइल ने देखा, सबने देखा। ये कौन है?
परमेश्वर है वो तो, ज्योति में रहता
परमेश्वर है, सही बात है।
हाँ,
तो अभी अंतर है, कुछ अंतर है जो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह में और ये जिसके बारे में बात हो रही, कुछ अंतर है। क्योंकि अमरता सिर्फ एक की ही थी, ये वचन बोल रहा है,
लेकिन बाद में परमेश्वर यीशु मसीह को मिली,
बाद में मिली, सही,
बाद में मिली,
मतलब दो की हो गई। अब
दो की है, अब जब दूसरे संसार में अब दो की है, पहले परमेश्वर जब आए थे तो एक ही की, परमेश्वर की थी, ओनली ओनली जो परमेश्वर।
थोड़ा मैं अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं फिर बात करूंगा जब हम क्लास में करेंगे। तो ये एक और गवाही आपके मूसा वाले क्वेश्चन की भी, परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा और ना कभी देख
बटन बोला यहाँ पर देखो
ना कभी देख सकता है। परमेश्वर का जो रूप है उसको शारीरिक आंखों से देख लोगे तो भस्म हो जाओगे, भस्म। और ये जो आजकल आप सुनते हो ना, मेरे रूम में लाइट हो गई, कभी विश्वास मत करना। पौलुस अंधा हो गया, सारी उम्र तक उसका दृष्टि गई रही थी।
और वो भी जब मूसा ने दर्शन दिए था पीठ पीछे की।
हाँ,
ये क्या है जो लोग बोलते हैं बड़े बड़े
झूठ,
दस गुरु बोलते हैं मैं ना आज परमेश्वर ने मुझसे बातें की तुम्हारे लिए, ये बातें
झूठ। ये मूसा से भी बड़े हो गए, क्योंकि मूसा से भी स्वर्गदूत ने बातें की थी, ये मूसा से भी बड़े हो गए। ये प्रभु दूसरों से बड़े हो गए, क्या करें अभी, मैं क्या बोलूं। सत्य ये है सत्य।
बोलते हैं प्रचार में कि आज मैंने परमेश्वर से बात की, परमेश्वर तो तुम्हें बड़ा आशीष दे रहा है, परमेश्वर तुम्हें ये कर रहा है, मैंने आज परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि ताकि तू ये बता।
तो वही तो बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा धोखा चल रहा है सर।
वो भविष्यवाणी करते हैं प्रेयर में, वो क्या होती है, मतलब जो सच्चाई होती है भविष्यवाणी जो करते हैं लोगों के जीवन में जो होती है।
भविष्यवाणी के बारे में मैंने आपको शुरू में भी बताया था, आज फिर चलो इसमें थोड़ा सा विराम लगाते हैं। मैं आपको बताता हूँ भविष्यवाणी क्या होती है। हम जो बात कर रहे थे, हम तो बात कर रहे थे ये सारी बातें रिकॉर्ड हो गई इसमें, तो हम ये बातें कर रहे थे, जो बात हम कर रहे थे कि यादगारी पत्थर, तो वो परमेश्वर के लिए यादगारी पत्थर है जिसको किसी ने देखा नहीं है। और जो डाउट करते हैं, कई साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, परमेश्वर है ठीक है, उनकी भी जब आंखें खुलेंगी समझदारी की राज्य में, बोलेंगे वाह परमेश्वर क्या तेरी महिमा है। वो उसकी महिमा के लिए, उसकी महानता के लिए एक यादगारी पत्थर है और वेदी, वेदी वेदी है। बोला एक तो क्या है, एक वेदी है और एक खंबा है। खंबे का मतलब गवाही और वेदी का मतलब है जहां पे बलिदान चढ़ाया जाता है, वेदी पे बलिदान चढ़ाया जाता है ना। तो ये कौन सा बलिदान है, ये पढ़ लो इब्रानियां 13:15। इब्रानियां 13:15
इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए करें।
होठों रूपी बलिदान, ये है परमेश्वर को महिमा देनी। सारा मनुष्य जाति परमेश्वर को महिमा देगी उसकी योजना के लिए। वाह परमेश्वर क्या सुंदर योजना बनाई तुमने, ये होगा असली बलिदान। इसलिए वो वेदी भी ठहरेगी, क्योंकि जब वो देखेंगे उस निशान को, उस यादगारी पत्थर को, बोल परमेश्वर को क्या देंगे महिमा। क्या परमेश्वर, बाइबल तो थी थी, बाइबल की योजना इसकी बनावट में भी रखती, क्या बात है।
एक
सच्ची मन से ये आवाज आएगी, होठों का बलिदान देंगे ठीक है। तो चलो अब हम ये पिरामिड के जो बनावट है, जो जिसके बारे में अभी हमने बात की, इसमें देखेंगे परमेश्वर की योजना कैसे छिपी है। सबसे पहले मैंने बताया था उसकी जो एंट्रेंस है, यहाँ से एंटर करते हैं 50 फुट ऊंचाई से वहां से एंट्रेंस होती है, जिसको नाम बोला गया है डिसेंडिंग पैसेज। तो 50 फुट ऊंचा, सॉरी डिसेंडिंग पैसेज से जाता है, 50 फुट ऊंचाई से एंट्रेंस होती है। कई साल लग गए चोरों को, चोरों ने सोचा पता नहीं इसमें कितना बड़ा धन होगा, कई साल ढूंढते रहे दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, दरवाजा ही नहीं पता चला। दरवाजा 50 फुट ऊंचाई पे है, 50 फुट ऊंचा जाके फिर मिलता है दरवाजा, और दरवाजे से एंटर होते ही सीधा ऐसे नीचे को एंड होता है।
दरवाजे से भी जाने के लिए सीढ़ियां ऐसा कुछ,
हाँ हाँ, होल्स को पकड़ पकड़ के ऐसे चढ़ के फिर ऐसे ठीक है। दरवाजे से जब एंटर होते तो मैंने बताया ना ऐसे नीचे को जा रहा है खड्डा, जैसे ये ऐसे ऐसे ठीक है
तिरछा।
हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है परमेश्वर ने मनुष्य को एक बहुत ऊंचे लेवल पे बनाया था। आदम की वाटिका में जो आदम था, आदम को इतनी महिमा दी, इतनी महिमा दी, क्या बोला कि तू धरती का क्या है, राजा है, धरती पे राज्य करने के लिए, है ना। लेकिन आदम ने क्या किया, आदम गिर गया और क्या किया, पाप किया, और कहाँ एंड हुआ जाके, मृत्यु, या खड्डा। खड्डे का मतलब क्या, कब्र, कब्र। ये पढ़ लो रोमिया 5:12, इसमें हम पढ़ते हैं
इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया।
तो ये देख लो तस्वीर मनुष्य जाति के गिरने की, किसमें गिरने की, खड्डे में, ठीक है, जो किससे शुरू हुई, आदम से। तो 50 फुट ऊंचे दरवाजे का मतलब क्या है, परमेश्वर ने जो आदम को महिमा दी थी, क्या अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया था ना परमेश्वर ने, ये कितनी बड़ी महिमा है। और किसी सृष्टि को ऐसा ऐसी महिमा दी
नहीं
दी, सिर्फ इंसान को, इंसान को ऊंचाई पे एक एक लेवल दिया, लेकिन गिरने से क्या हो गया, गिर गए, पाप में गिर गए, और पाप से गिरने से क्या आ गई, मृत्यु आ गई। तो ये जो दरवाजा है, जो एंट्रेंस है 50 फुट ऊंची, इसका मतलब है परमेश्वर ने जो इंसान को महिमा दी, लेकिन ये क्या हो गया, गिर गए, और वो खड्डे का मतलब है कब्र, यानी मृत्यु, कहाँ गिर गए, मृत्यु में, ठीक है। ये देख लो, ये चौड़ा रास्ता नीचे को जा रहा है ना मृत्यु को, और जो छोटा रास्ता देखो वो ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो ये है इसका पहला मतलब। उसके बाद जो गिरना, जो हम उधर आ जाओ, आ जाओ छोड़ो, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो डिसेंडिंग पैसेज। डिसेंडिंग पैसेज का मतलब है दरवाजे से एंटर होने के बाद जो आप रास्ता लेते हो, उसे जाते 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 एंड में तो खड्डा है, लेकिन उससे पहले मैंने बोला दो एंट्रेंस है, एक तो चलते थोड़ी देर बाद ही एक एंट्रेंस है, लेकिन उस पर ग्रेनाइट लगाया, पता ही नहीं चलता रास्ता इधर से कोई रास्ता है या नहीं है। लेकिन उसके बाद आगे जाके खड्डे से थोड़ा पहले एक और दरवाजा है, तो इन दोनों का क्या मतलब,
पूरा रास्ते का क्या घेरे जो बंद है,
मैं बताता हूँ, वो भी बताना है, ठीक है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, दरवाजे से लेके जो रास्ता चल रहा है, इसका मतलब है चौड़ा रास्ता, जो ये चीज है ना, ये चीज जो एंट्रेंस के बाद ये जो रास्ता है,
ये
चौड़ा रास्ता, और चौड़े रास्ते का मतलब, चौड़े रास्ते का अंत कहाँ होता है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना, साकेत है वो मार्ग और चौड़ा है वो फाटक जहाँ हर कोई जाता है जो विनाश की ओर लेके। तो विनाश क्या है, मृत्यु, ठीक है, वो क्या है, हाँ, मत्ती 7:13 पढ़ लो, मत्ती 7:13।
साकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है,
देखो,
और बहुत से जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि साकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है और थोड़े ही उससे पाते हैं।
7:13 पढ़ो, खाली विनाश के बारे में बात कर रहे हैं, तो विनाश, विनाश क्या है, भजन संहिता 55:23 पढ़ लो,
परंतु हे परमेश्वर तू उन लोगों को विनाश के खड्डे में गिरा देगा।
विनाश का खड्डा मतलब समझ गए, कब्र, मृत्यु, मृत्यु। यशाया 38:18
क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते।
तो कब्र है, खड्डा है, नरक, नरक या हेल जिसे बोल लो, मौत की स्थिति। तो तीन चीजों का मतलब पता चल गया, पहली बात 50 फुट की ऊंचाई पे जो दरवाजा है, उसके बाद जो रास्ता है वो चौड़ा रास्ता है और खड्डा क्या है? मृत्यु। खड्डा है मौत की स्थिति, कब्र, नरक जिसे बोल लो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो अभी उस खड्डे से बचना है तो क्या करना है? ऊपर को जाना है दरवाजे से, सही ना? अगर वो मृत्यु से क्या करना है? बचना है तो ऊपर को जाना है। तो मैंने बोला ना, सबसे पहले ये देखो सर, यहाँ पे ये दरवाजे के थोड़ी दूर जाके ही एक एक रास्ता है, लेकिन ये ग्रेनाइट लगा है, रेड ग्रेनाइट, पता ही नहीं चलता दरवाजा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये चीज दर्शाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को इस मृत्यु के दंड से बचने का एक अवसर दिया था। कब? जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी इज़राइल को। हाँ, जो व्यवस्था दी, पढ़ लो, लेविया 18:5, लेवे व्यवस्था 18:5, गलातियां 3:12।
व्यवस्था 18:5। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना, जो मनुष्य उसको माने वे उनके कारण जीवित रहेगा।
तो मतलब वो मौत नहीं देखेगा। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? अगर कोई कानून व्यवस्था को पूरा करता है तो वो मरेगा नहीं, मतलब के बचने का तरीका है। परमेश्वर ने मौका दिया, लेकिन ये चांस जो था ये एक तरह का ब्लॉक्ड था, बंद, इसको पूरा करना असंभव है, आपके लिए, मेरे लिए, किसी के भी लिए, सिर्फ एक ने पूरा किया। ये बात पढ़ लो रोमियो 7:10 के, वो जो कानून तुमने दिया था मेरी मौत का कारण बना, ये पढ़ लो
रोमियो 7:10। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी।
ये पौलुस बोल रहा है। तो इसमें एक और लेसन मिल रहा है कि जो आपको व्यवस्था पालन करने के लिए बोलते हैं उनको ये वचन दिखाओ, व्यवस्था को कोई नहीं पूरा कर सकता।
और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण है, ये पौलुस बोल रहा है
जी। तो ये कोई मतलब कहने का मतलब पूरे तरीके से कोई व्यवस्था को नहीं पूरा कर सकता, हम में से शरीर वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते थे। हाँ, तो ये जो एक रास्ता था, रास्ता होते हुए भी ये रास्ता नहीं था, क्योंकि इसको, इससे बचना, इस रास्ते से जाना बड़ा कठिन, क्या असंभव है, असंभव था, सही है। चलो, तो ये हो गया वो रास्ता जो ऊपर को जा रहा है। ये है कानून जो परमेश्वर ने दिया था किसको? मूसा के द्वारा इज़राइलियों को, कि जो इसको पूरा करेगा वो इसके कारण क्या रहेगा? जीवित रहेगा। लेकिन उसको, हाँ, चांस था, लेकिन उसको पूरा करना असंभव। अभी उसके बाद चार चीजें हो गई। अभी एक तो ये जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस मतलब कि जिस स्थिति पे परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन आदम ने कौन सा रास्ता अख्तियार किया? चौड़ा रास्ता अख्तियार किया, चौड़े रास्ते से आई मृत्यु। और उसके बाद ये एक रास्ता जिसमें रेड ग्रेनाइट लग गया है, रेड ग्रेनाइट ही परमेश्वर इसके चैम्बर में, राजा के चैम्बर में है और रानी के चैम्बर में भी है। लेकिन इसको, ये था कानून जिसको, जिसके द्वारा जीवन प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन ये पूरा करना असंभव था। उसके बाद एक और नीचे रास्ता, ये वाला रास्ता जिसको वेल शाफ्ट बोला है, ये क्या है? अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये है दूसरा तरीका जीवन प्राप्त करने का जो सबके लिए ओपन है। और ये कौन है ये पढ़ लेते हैं, प्रेरितों के काम 4:12
किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें।
मतलब मृत्यु से बचना है तो एक नाम है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं आई एम द वे, मैं हूँ रास्ता। तो ये दूसरा रास्ता कौन है? ये और कोई नहीं बल्कि हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि राज्य में भी एक बार जीवित तो होंगे, लेकिन उसके बाद योना पता क्या बोल रहा है, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन नहीं। कहने का मतलब क्या, यीशु क्या है? सत्य
वचन।
तो जो वचन को उस वक्त स्वीकार करेगा, उसके अनुसार बदलेगा, उसके पे चलेगा, वो तो जीवन प्राप्त करेगा। लेकिन जो नहीं सुधरेंगे उनके लिए होगी दूसरी मौत, फिर जीवन का उनके पास वो कोई नहीं है। ठीक है, तो फिर यूहन्ना 11:25-26 में भी बोलते हैं, पढ़ना मत, मैं आपको वचन बोल देता हूँ। बोलते हैं मैं पुनर्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनर्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। पढ़ लो, पढ़ लो नहीं तो यूहन्ना 11:25-26
यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित जिएगा।
देखो तो पुनरुत्थान भी प्रभु यीशु मसीह है,
जीवन भी
वही देगा। ठीक है, तो ये है वो दूसरा रास्ता। उसके बाद दूसरा रास्ता चढ़ने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर, ये देखो ये एक बॉक्स सा है, ग्रूटो, इसे ग्रूटो बोलते हैं, ग्रूटो इंग्लिश में ग्रूटो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह का जो छुड़ौती वाला बलिदान, जो 30 साल के बाद, ये 30 साल के बाद जो प्रभु यीशु मसीह ने 33.5 साल की उम्र में जो बलिदान दिया सारी मनुष्य जाति के लिए।
ग्रूटो जो एक पेड़ है,
ग्रोटो पेड़ नहीं तो,
तो
बाद में बात करते हैं। तो इसका मतलब है ये जो बॉक्स है ग्रोटो, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह की सलीब की मौत। ठीक है, जिसमें परमेश्वर ने, परमेश्वर को क्या मिला? जीवन के बदले जीवन, जिसके जरिए से परमेश्वर ने सारी मनुष्य जाति का पुनर्थान करवाया। और दूसरा तिमोथियस 1:10 में पढ़ लो क्या लिखा है।
दूसरा तिमोथियस,
हाँ जी,
1:10 पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया।
अभी आपको दो उदारता बतानी है मुझे। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले तो क्या किया? मृत्यु का नाश। उसके बाद वो दो चीजें दे रहा है, एक तो जीवन अमरता, जीवन और अमरता। अभी जीवन है धरती की उदारता और अमरता है स्वर्ग की उदारता। जीवन क्या है? जो सारी मनुष्य जाति पाएगी। अमरता क्या है? जो खाली कलीसिया पाएगी, जो स्वर्ग में जाएगा। ग्रुप
जीवन वही है, अनंत जीवन जो
सोच के या अनंत जीवन है, बिना जीव बिना मौत वाला जीवन जो धरती पे है, लेकिन अमरता का वाला जीवन स्वर्ग में जीवन। तो प्रभु यीशु मसीह दो चीजें दे रहा है, यानी कि दो उदारता है, यानी कि दो उदारता है। तो इसीलिए वो जो क्या बोलते हैं, जो बनावट में भी दो चीजें हैं, एक तो रानी का चैम्बर है और एक तो राजा का चैम्बर है। राजा का चैम्बर है स्वर्ग की तस्वीर और रानी का चैम्बर है धरती की तस्वीर। एक ग्रुप को तो दो ग्रुप को मिलेगी धरती की उदारता और दो ग्रुप को मिलेगी स्वर्ग की उदारता। तो इसीलिए इस वचन में क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, क्या दे रहे हैं जीवन और अमरता। अमरता क्या है? स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग की उदारता,
जीवन धरती।
हाँ, तो स्वर्गीय उदारता है राजा का चैम्बर और रानी का चैम्बर है धरती की उदारता। ठीक है, तो देखो कितना सुंदर तरीके से दिखाया जाता है। रोमिया 2:7 वचन पढ़ लो।
जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वह अनंत जीवन देगा।
ठीक है, उन्हें वह
अनंत जीवन देगा।
फिर से पढ़ना, फिर से पढ़ना।
जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वह अनंत जीवन देगा। ये थोड़ा सा गलत है, ब्रदर जी ने भी बोला था उन्हें नहीं बोलना है।
हाँ।
उन्हें शब्द गलत लगाया है,
तो
ये ब्रदर ने
कॉमा जीवन देगा। हाँ। तो
उसमें है कॉमा अनंत जीवन देगा।
हाँ।
तो ये ब्रदर ने बोला था।
हाँ। तो ये दो उदारता है, एक तो स्वर्गीय उदारता है, एक तो धरती की उदारता है। ठीक है, तो स्वर्गीय उदारता है राजा का चैम्बर, धरती की उदारता है रानी का चैम्बर। उसके बाद जब आप इससे निकलो आगे इस ग्रोटो से, तो आप एक जगह पे पहुंचते हो। देखो डायग्राम हो तो आसान हो जाता है। ये देखो अभी जब आप, ये क्या है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। ठीक है, इसके बाद आप, आपको दो रास्ते मिल रहे हैं। देखो एक तो रानी के जाने का, एक राजा के। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचो तो आप नीचे को देखो तो आपको पता, अरे यहाँ से भी रास्ता था, यहाँ से भी रास्ता था। यहाँ पे जाके पता चलेगा ना आपको, गैलरी से दोनों ही रास्ते दिखेंगे ना, सही ना। बंद तो ये इधर से है, इधर से तो खुला है। तो इसका भी कुछ मतलब है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ये गैलरी का मतलब क्या है। ये जो गैलरी है ना, ये गैलरी सबसे बड़ी बात, ये गैलरी जो है ये है बहुत बड़ी गैलरी है। 28 फुट ऊंची है, 6 फुट चौड़ी, यानी इतनी चौड़ी होगी। 28 फुट ऊंची है, मतलब ऊंचाई बहुत है। 155 फुट लंबी है, यानी अगर आपको राजा के चैम्बर तक पहुंचना है तो ये एरिए से, इधर सीढ़ियां नहीं है, इधर ऐसे ऐसे होल है, ऐसे 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 पकड़ के 28 फुट ऊपर जाना है। और नहीं सॉरी, 155 फुट लंबा है, 155 फुट की दूरी तय करनी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्वर्गीय उदारता, स्वर्गीय बुलावा। इब्रानिया 3:1 पढ़ लो।
इसलिए हे भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो।
प्रेरित प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला है? प्रेरित भी बोला है। ठीक है, तो ये है स्वर्गीय बुलाहट, समझ रहे? स्वर्गीय बुलाहट हर किसी को नहीं आती है, ये है स्वर्गीय बुलाहट। अभी ये ग्रैंड गैलरी जो है, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है सब बुलाए हुए, सारे बुलाए हुए जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनको दरवाजा तो मिल गया लेकिन सत्य नहीं मिलता, सत्य नहीं मिलता। अगर सत्य नहीं मिला तो ये जो जीवन है ये वो जीवन है, अमरता वाला जीवन, तो फिर वो जीवन भी नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो सत्य जब मिलता है तब हम दूसरे ईसाइयों से थोड़े अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें चुन लिया गया है, पहले हम बुलाए हुए थे लेकिन अब चुने हुए की स्थिति में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रैंड गैलरी है, सारे बुलाए हुए क्रिश्चियन यानी सारे पहली स्टेज पहले पहला कदम ठीक है जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं विश्वासी बन गए हैं ठीक है उनको एक चीज मिल जाती है वो है धार्मिकता क्योंकि प्रभु यीशु अगर बोलते ना आप क्या बोलते हो
हाँ तुम्हें तुम्हारे पाप क्षमा करना
देखो अभी यहाँ पे बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको माफ करवाने हैं पाप तो क्या करो खाली विश्वास
करो
तो पाप माफ बपतिस्मे का कुछ और मतलब है जो कुछ बहुत गहरा है इसीलिए अगर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं ठीक है और फिर हमें समझ आती है गलातियां 3:24 पढ़ लो गलातियां 3:24 गलातियां 3:24
इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षा हुई है कि हम विश्वास से धार्मिक
है व्यवस्था इसलिए थी ताकि हम मसीह तक क्या करें पहुंचे एक स्कूल का काम किया व्यवस्था में ठीक है तो ये बड़ी गहरी गहरी बातें हैं जो जो समझ नहीं है हमें ठीक है व्यवस्था और विश्वास को कभी मिक्स नहीं करना है व्यवस्था अपनी जगह है विश्वास अपनी जगह है ये अलग अलग चीजें हैं जो व्यवस्था रखता है उसको विश्वास की जरूरत नहीं है और जो विश्वासी है उसको व्यवस्था रखने की जरूरत नहीं ठीक है तो ये कन्फ्यूजन थी बड़ी शुरुआती कलीसिया में इसीलिए वो पौलुस बोलता है ना हे मूर्ख गलातियों हे मूर्ख करिन्थियों तुम लोगों को किसने बहम में डाल दिया है ठीक है तो ये देखो ये गैलरी की तस्वीर है ऐसे होल्स थे जिसको पकड़ पकड़ के जाना था एक तो ये हॉरिजेंटल एक सीधा रास्ता है जो रानी के घर पे जाता है और एक ये है जो इसके बाद होल्स के बाद एक बहुत बड़ा कदम है एक कदम है उसके बाद एंटी चैम्बर है और एंटी चैम्बर के बाद राजा का चैम्बर है ठीक है तो ये ग्रैंड गैलरी बहुत ही जैसे स्लिपरी टाइप आप चढ़ाई पे चढ़ते हो ना तो स्लिप होते हो तो ऐसी है ये ग्रैंड गैलरी अभी ये ग्रैंड गैलरी का मतलब क्या है और ये बहुत बड़े कदम का मतलब क्या है ये एंटी चैम्बर का मतलब क्या है ठीक है ये तस्वीर है वो ईसाइयों की जो विश्वास के द्वारा चलते हैं देख के नहीं विश्वास से ये पढ़ लो दूसरा कुरंथियां 5:7
क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं
विश्वास से जो देख के चलते हैं वो विश्वास नहीं हो सकता क्योंकि हमने सबूत देख लिया अभी हम चल रहे हैं लेकिन जो बिना देखे चलते हैं ना वो असली विश्वास होता है समझे तो इसलिए ज्यादा भरोसा चमत्कारों पर नहीं होना चाहिए ठीक है हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है बस चलते जाना है ठीक है तो इसलिए ये जो अपने क्या बोलते हैं उसको देह दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं ये है बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कदम उसके बाद जो होल्स है जो जिनसे पकड़ पकड़ के जाना है वो है हमारे हर रोज के तजुर्बे परमेश्वर हमें वचन देता है तजुर्बे देता है ठीक है जिसके द्वारा वो ईसाइयों को ऊपर की तरफ परमेश्वर की योजना में खींचता है ठीक है अपनी बाइबल स्टडी देता है बहुत बड़े बड़े चीज़ें दिखाता है ये बात पढ़ लो खाली विश्वास करने से ही हम स्वर्ग के भागीदार नहीं हो जाएंगे पढ़ लो फिलिपियां 1:29 29
क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ।
खाली विश्वास ही नहीं, दुख भी उठाओ। लेकिन यहाँ पे तो जब दुख की बात आती है तो हम और कहानियां बनाने, तुम्हारी आशीष रुकी हुई है, तुम्हारा ये हुआ पड़ा है, तुम्हारा वो हुआ पड़ा है, ठीक है। और पहला पत्रस 2:21 में पढ़ लो।
पहला पत्रस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो।
ठीक है, तो ये है गैलरी। गैलरी है क्या? कदमों पे चलना। और ये बड़ा टफ है, मैंने बताया ना 6 फीट का वो है। अगर राजा के चैम्बर को जाना है, रानी के चैम्बर को तो उधर से ही निकल जाओगे, राजा के चैम्बर को जाना है तो गैलरी से जाना है। और गैलरी क्या है, 150 फुट लंबी है और होल्स हैं, छोटे छोटे होल्स जिनको पकड़ के ऊपर चढ़ना है। और 6 फुट की ही ऊंचाई है, सॉरी ऊंचाई 28 फुट है और चौड़ाई सिर्फ 6 फुट है। इसमें से गैलरी से होते हुए आप कहाँ पहुंचे हो? एक बहुत बड़ा कदम। वो बहुत बड़ा कदम क्या है? वो बहुत बड़ा कदम है, अभी जब हम गैलरी में पहुंच जाते तो जब हम नीचे देखे हमें दिखते हैं दो का क्या मतलब कि हमें तब हम पहचान जाते हैं कि ये व्यवस्था के द्वारा जीवन प्राप्त करने का अवसर था, ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा जीवन प्राप्त करने का अवसर था। तो ये बहुत बड़ा कदम है जब हम फैसला लेते हैं कि अब हम उसके साथ मरेंगे। 2 तिमोथियस 2:11
यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी।
तो ये फैसले की घड़ी होती है जब हम सत्य जान लेते हैं, जब हमें पता चल जाता है परमेश्वर की योजना का, हम फिर एक फैसला लेते हैं। क्या लेते हैं? कि अब मुझे इसके साथ क्या करना है? मरना है। और मरने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ये पढ़ लो 14:28।
तुम ऐसे कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर कल्पना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है या नहीं?
तो समझ लो, अगर मरने जा रहे हो मेरे साथ तो देख लो क्या क्या होगा। और सोच लो पहले, ऐसा कोई नहीं करता कि पहले हिसाब ना करे बैठ के कि हाँ क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी फैसले की घड़ी होती है, ये है वाचा बांधने की घड़ी। ये बहुत बड़ा कदम है कि आज से हम कुर्बानी वाली मौत मरने के लिए तैयार हैं, कुर्बानी वाली मौत मरने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कदम जब हम उठाते हैं तो हम दाखिल होते हैं 3 जगह में, 3 बार झुकते हुए हम पहुंचते हैं राजा के चैम्बर में, 3 बार झुकते हुए। ये 3 बार झुकने का मतलब पता क्या है? प्रभु यीशु मसीह 16:24 में बोल रहे हैं, अगर कोई मेरा पीछा करना चाहे
तो इनकार,
पहले अपने आप का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरा पीछा करे। तो पहली बार झुकना, यानी पहला झुकना, पहली बार झुकने का मतलब है अपने आप का इनकार और अपने सारे धरती के सपने, आशाएं, इच्छाएं सब कुछ छोड़ के परमेश्वर की इच्छा। और वो शुरू होता है वो एक बपतिस्मा जो जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बात की कि एक बपतिस्मा। ठीक है, जिस दिन हम वाचा बांधते हैं परमेश्वर के साथ, लो परमेश्वर आ गया मैं तेरी इच्छा पूरी करने। ये है पहली बार झुकना, ये है अपने आप का इनकार, ये है परमेश्वर आज से मैं शारीरिक तौर पे जेपी शर्मा मर रहा हूँ, आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा, आज पे आज से मेरे पे तेरा अधिकार है। ये है पहली बार झुकना। दूसरा क्या है? अपनी सलीब उठाना। अभी सलीब उठाना क्या? जब वाचा बांधने के बाद आपको परमेश्वर की इच्छा पूरे करते हुए परमेश्वर के आज्ञाकारी में रहते हुए जो भयानक भयानक शब्दों के बाण मिलेंगे या बातें मिलेंगी या विरोध मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, वो है अपनी सलीब उठाना। सलीब उठाने का मतलब क्या है कि मैं अभी ये कष्ट ये बोझ सह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तीसरी बार झुकने का मतलब क्या है? तीसरी बार झुकने का मतलब है हर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना। पीछे हो लेने का क्या मतलब? पूरी तरह से अपने जीवन को कुर्बानी वाली मौत मर के कहाँ एंटर हो जाएंगे? राजा के चैम्बर। और राजा के चैम्बर का मतलब है स्वर्ग। राजा के चैम्बर का मतलब क्या है? स्वर्ग, जहाँ परमेश्वर बैठते हैं, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ परमेश्वर खुद विराजमान है, जहाँ हमें मिलेगा ईश्वरीय सद्भाव। ये है राजा का चैम्बर और ये है कलीसिया की योजना। ये पढ़ लो प्रकाशित वाक्य 20:6।
धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसो पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है।
देखो कितने कितना पुनरुत्थान?
पहला।
तो इसका मतलब और भी होंगे ना। तो ये है पहला पुनरुत्थान। तो पहला पुनरुत्थान है, सबसे पहला पुनरुत्थान कलीसिया का, 144,000 का। तो इन पे दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये है वो स्वर्गीय जीवन, ठीक है। और ये है वो क्या बोलते हैं, ईश्वरीय स्वभाव। ये है राजा का चैम्बर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है रास्ता, रानी का चैम्बर, वो गैलरी से नीचे से ही सीधा रास्ता। उसका मतलब क्या है? वो गैलरी का रास्ता पता कैसा है? उसमें 7 बंटवारे हैं, ऐसे 7, 6 बंटवारे तो यानी कितना है, 4.5 फुट से कम, यानी 46.5 इंच की ऊंचाई है। और उसके बाद जब 7वां आता है तो 20 इंच खुल जाता है, तो फिर हो जाता है 5.5 फुट, ठीक है, जिसमें कोई आराम से चल सकता है, लेकिन 4.5 फुट में आराम से नहीं चल सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो रास्ता है रानी को घर को जाने का रास्ता, रानी के चैम्बर को, ये है अय्यूब बताता। अय्यूब 5:19 में पढ़ लो।
वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरना 7 से भी तेरा कुछ हानि ना होने पाएगी।
6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, 7 से कोई हानि
ना होने पाएगी।
तो इसका मतलब ये क्या है? ये है परमेश्वर की योजना मनुष्य जाति के लिए, 7,000 साल की योजना। 6,000 साल में तो तुम कष्ट में रहोगे, लेकिन 7,000 साल में वो तुम्हें छुड़ाएगा। क्या करेगा?
छुड़ाएगा।
तो ये जो 7,000 साल है, ये है प्रभु यीशु मसीह का 1,000 साल का राज्य। 6,000 साल है बुराई को अनुमति, जिसके बारे में गहराई में बात मैं करूंगा बाद में, जो परमेश्वर के 7वें दिन के बारे में जब हम बात करेंगे, ठीक है। तो अंत में स्थिति क्या होगी? यशाया 13:12 में पढ़ लो।
आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी, यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा।
नहीं, 13:12
मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा।
देखो मतलब इतना बढ़िया कैरेक्टर में इतना बढ़िया बना दूंगा, स्वभाव में इतना बढ़िया बना दूंगा। तो सोने का मतलब होता है कैरेक्टर। तो ये रानी का जो चैम्बर है, ये बात और पढ़ लो ध्यान से, भजन संहिता 22:27-28 में पढ़ लो। और सिस्टर आप यशाया 2:3 पढ़ लो, अभी यशाया में थे आप, 22:27-28 यशाया 2:3।
पृथ्वी के, चलो आप पढ़ो,
बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं,
परमेश्वर के राज्य में याकूब इज़राइल को जाएं,
तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे।
देखो
क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलम से निकलेगा।
यरूशलम यानी इज़राइल से आएगा परमेश्वर का वचन। फिर पढ़ लो भजन संहिता 22:27-28।
पृथ्वी के सब दूर दूर के देश के लोगों उसको स्मरण करेंगे और उसको फिर उसकी ओर फिरेंगे और जाति जाति के सब कुल मेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज यहोवा का ही है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है।
समझ गए। तो ये है वो हॉरिजेंटल पैसेज जो क्या करता है, हमें रानी के चैम्बर तक लेके जाता है। ये है परमेश्वर की 7,000 साल की जो योजना है मनुष्य जाति के लिए, जिसमें वो उनको लेसन सिखा रहा है। 6 विपत्तियों 6 मुश्किलों में है, लेकिन 7वीं में उसको क्या करेगा, छुड़ाएगा। ठीक है, 7वीं में क्या करेगा, छुड़ाएगा। और उसके बाद ये निकल के मिलता है क्या, रानी का चैम्बर। और रानी का चैम्बर क्या है, पहला कुरंथियां 15:24 पढ़ लो। पंद्रह का 21:22 फिर 24 पढ़ लो, 21:22-24 पढ़ लो।
क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से।
देखो ये देखो, अपनी अपनी बारी से जीवित होंगे सब। पहले पुनर्थान, पहला पुनर्थान आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा, ऐसे होगा। ये देखो आगे 24 पढ़ लो।
परंतु हर अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार पर सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा।
तो ये है रानी का चैम्बर, जब 1,000 साल पूरा हो जाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह सारा सुधार का काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये बात पढ़ लो मत्ती 25:34। ये है भविष्यवाणी जो हम उस समय के बारे में पढ़ रहे हैं।
तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ कहीं नहीं छीटता वहाँ से बटोरता है।
34
तब राजा अपनी दाहिनी ओर बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यीशु मसीह बोल रहे हैं ना,
तो ये बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आओ जो शुरू जगत के शुरू में तुम्हारे लिए राज्य रखा हुआ है उसको ले लो। मनुष्य जाति को पूरा राज्य दे दिया जाएगा, परमेश्वर हर एक आंसू पहुंच देगा। पढ़ लो प्रकाशित वाक्य 21:4।
21 साल वह उनकी आंखों से सब आंसू पहुंच डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी,
पुरानी बातें जाती रहेंगी। और मनुष्य जाति की जो योजना के बारे में हम पढ़ लो यशाया 25:9 में।
यशाया 25:9
उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बात छोड़ते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी उसकी बात छोड़ते आए हैं, हम उसके उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे।
ये हर एक इंसान बोलेगा, हर एक इंसान। तो सचमुच देखो कितना बड़ी परमेश्वर की यो योजना किसमें, बिल्डिंग के बनावट में, मीनार उसमें, पिरामिड की। तो ये एक काम करेगा चिन्ह के तौर पे, ये एक काम करेगा खंबे के तौर पे, ये एक काम करेगा गवाही के तौर पे, ये एक काम करेगा वेदी के तौर पे, करेगा ना। लोग बोलेंगे वाह परमेश्वर क्या तेरी योजना कहाँ छिपाई हुई थी, वाह। देखो तो ये सारी बात तो आज हम सीखने को मिल रही है उस 7 अजूबों में से एक अजूबे में, जो 4000 साल पुराना है और बड़ा ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ। और सचमुच परमेश्वर की महिमा के लिए एक वचन पढ़ के आज की क्लास खत्म करेंगे। भजन संहिता 145 का 3
का
3 145 का 3
यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है।
यहोवा महान और अति स्तुति के
योग्य है,
उसकी महिमा
बड़ाई अगम है,
अगम है, अगम जिसको समझा नहीं जा, अंत नहीं है। परमेश्वर ही सबको आशीष करे, आमीन।